Blessed Savior, Om Namah Siddhaya, Om Namah Siddhaya, Om Shuddhatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savasahunam, Hantai Marcharahiya, Jai Jara Marananta Poradha, Samsara Layatamaham, Jaina Chinna Jinam Vande. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता हैं गुंडर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो तृतीय अर्थाधिकार है, स्थिति विभक्ति नाम का, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 72 पर आ गए, 72। यह स्पर्श की बात हमने शुरू की थी, देखना कि अन्य अन्य मार्गणाओं में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्पर्श कितना है, यानी उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों का स्पर्श, यानी वो कितने क्षेत्र में रहते हैं या मारणांतिक की अपेक्षा कितने क्षेत्र तक जाते हैं, उसकी बात हमने देखी थी। अब यहाँ एकेंद्रियों में देख रहे हम 72 पृष्ठ पर 125 नंबर का जो बिंदु है, वहां उसको वहां से पढ़ेंगे हम। मार्गणाओं में उत्कृष्ट यानी उनकी अपने योग्य उत्कृष्ट समझना। जब ओघ में उत्कृष्ट कहेंगे तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर को देखा था, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जो जिस काल में बांधते हैं उस काल में। अब यहां जो बात हो रही है मार्गणाओं में हो रही है, एकेंद्रियों में मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने, एकेंद्रिय जब जनरल कहेंगे तो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति कब होगी या किसके होगी? हाँ, पहले समय में देव उत्कृष्ट स्थिति बांधकर दूसरे समय में मरकर एकेंद्रियों में उत्पन्न हुआ है, उसके एक समय कम 70 कोड़ाकोड़ी सागर, एकेंद्रियों संबंधी उत्कृष्ट स्थिति। तो लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का एकेंद्रिय भले अनंत है और एकेंद्रिय भले सब लोक में है, परंतु जघन्य में तो उनको हम ले सकते हैं, उत्कृष्ट में वो संख्या कम है क्योंकि देव मरकर आने वाले वो उत्कृष्ट स्थिति वाले होते हैं। मनुष्य में से क्या नहीं आ सकते एकेंद्रियों में? आ सकते, परंतु मनुष्यों में से वो तो आने वाले अंतर्मूर्त के पश्चात आए, इसलिए देव को यहाँ उनकी बात की। हाँ, ये लब्धिया पर्याप्तकों में या नरक में जा सकते, एक इंद्रियों में नहीं जाएंगे। मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले, हमने देखा उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले नरक मनुष्य और तिर्यंश मरकर नरक में जाएंगे, पंचेंद्रिय तिर्यंशों में जाएंगे या मनुष्य में आएंगे। एक इंद्रिय या अन्य लब्धिया पर्याप्तकों में जन्म लेने वाले एक अंतर्मूर्ति के बाद जाएंगे। अब इसलिए यहाँ जो वर्तमान का क्षेत्र उनका लोक का असंख्यात भाग समझाएं और अतीत काल की अपेक्षा देखना है। त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया। ये जो सारे देव उत्पन्न होते हैं 8वीं पृथ्वी में, उनकी अपेक्षा लेना अतीत काल है। भले वर्तमान में वो गिने चुने होंगे, फिर भी अतीत काल की अपेक्षा वो पूरा ही 9 राज्यों का क्षेत्र उन्होंने व्यापा है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने, एक इंद्रियों की बात चल रही है, जो उत्कृष्ट नहीं वो सारे ही अनुत्कृष्ट हो गए, तो कहां तक हो गए? पूरे लोक में जीवों ने सब लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी प्रकार बादर एक इंद्रिय और बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए, यानी उत्कृष्ट स्थिति वाले है वो, जो अभी हमने जो देखा था देवों में से आकर उत्पन्न होने वाले लोक का असंख्यात भाग वर्तमान क्षेत्र है। और पूरा लोक है वो अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं, क्योंकि अनुत्कृष्ट स्थिति में उनको तो समुद्घात भी होगा पूरे लोक में, मारणांतिक समुद्घात। सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त और बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों में मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? तो लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का। आप कहेंगे सूक्ष्म एकेंद्रिय तो सब जगह है, तो असंख्यातवा भाग क्यों कहते हो? हाँ, जो उत्कृष्ट स्थिति बांधकर अंतर्मूर्त में मरकर यहाँ उत्पन्न हुए हैं, ऐसे जीव लेंगे तो वो तो अनंत नहीं होगा और पहले समय में ही होगा, इसलिए उनकी संख्या अल्प हो जाती है। और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है, ये अतीत काल की अपेक्षा सब लोक लेना है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने सब लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। अनुत्कृष्ट स्थिति तो वर्तमान में भी पूरा लोक घटित होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव पूरे लोक में रहते हैं। यहाँ उत्कृष्ट स्थिति वालों की बात थी, इसलिए वर्तमान में लोक का असंख्यातवा भाग और अतीत काल की अपेक्षा पूरा लोक और अनुत्कृष्ट में पूरा लोक। इसी प्रकार पांचों स्थावर काय, पांचों स्थावर काय सूक्ष्म, पहले इंद्रिय की अपेक्षा बात की थी इसलिए एक इंद्रियों को लिया, अब यहाँ काय मार्गणा में पांचों स्थावर काय कहेंगे। पांचों स्थावर काय सूक्ष्म पर्याप्त और पांचों स्थावर काय सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ, जिन देवों ने मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके अनंतर समय में मरकर नत्तर कोड़ा कोड़ी का बंध किया है और नेक्स्ट समय दूसरे समय में मरा है, तो उस समय तो उसका उत्कृष्ट बंध नहीं था, तो एक समय वहां भी गलेगा उसका। मरकर एकेंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया, अभी कहेंगे एकेंद्रिय, परंतु हमें पता है कौन से एकेंद्रिय हो गए, पहले में पहले बादर हो गए, तो बादर में पर्याप्त हो गए, तो क्या सभी बादर पर्याप्त एकेंद्रिय हो गए? अग्नि और वायु का एक नहीं हो गए, तो बादर यानी बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त पूरा लेना, बादर जल का एक पर्याप्त या प्रत्येक वनस्पति का एक पर्याप्त, वो प्रत्येक वनस्पति कहेंगे वो तो बादर ही होती है। साधारण में ही सूक्ष्म साधारण होगी तो उसमें सूक्ष्म भी होते और बादर भी होते। प्राप्त किया, ये देवों की बात की, उन्हीं एकेंद्रियों के, उन्हीं यानी स्पेसिफिक है ना, वे पहले समय में, वो भी एक समय घटित होता है पहले समय में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति होती है, अतः इनका वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण, क्योंकि इन जीवों की संख्या अल्प है, वो अनंत नहीं घटित होती है, और अतीत कालीन स्पर्श कुछ कम 9/14 राजू बतलाया है। देखो आप कहेंगे मारणांतिक समुद्घात, परंतु वो पहले समय में नहीं हो सकता है ना, उत्कृष्ट स्थिति पहले समय में है, अनुत्कृष्ट में वो घटित होगा मारणांतिक वाला, कुछ कम 9/14 राजू बतलाया है अतीत कालीन। 9/14 की बात हमने, देव मरकर पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न होते तो दो राजू नीचे गए हैं और मारणांतिक उन्होंने पृथ्वी आठवीं पृथ्वी तक किया है, यहाँ तीसरी पृथ्वी तक दो राजू और ऊपर सात राजू, इस प्रकार 9 राजू लेना चाहिए। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति वाले एकेंद्रिय जीव सब लोक में पाए जाते हैं, अतः इनका दोनों प्रकार का स्पर्श सब लोक का, दोनों प्रकार का स्पर्श है कौन से जया बेन? हाँ, वर्तमान कालीन और अर्तित कालीन। बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों में यह व्यवस्था अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इनके स्पर्श को एकेंद्रियों के समान कहा। अविकल यानी उसमें तो निरंतर घटित होती है, उनमें वो घटित होती है, उसमें कोई दोष नहीं है, उनमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वहां तो घटित हो जाती है बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों में, क्योंकि देव इन्हीं में तो उत्पन्न होते हैं, जब सामान्य एकेंद्रिय कहेंगे तो भी घटित होता है, परंतु वहां अपेक्षा तो बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों की है। अकेले बादर एकेंद्रिय कहेंगे तो भी घटित होगा, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में तो होता ही है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनका सब लोग स्पर्श, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों में जब सब लोग स्पर्श कहते हैं अनुत्कृष्टों के बारे में, मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा ही जानना चाहिए। क्या कहना चाहते पता लगा? बादर एकेंद्रिय पर्याप्त कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात विभाग में, क्योंकि पृथ्वियां हैं, जल है, अग्नि है, वनस्पति, हाँ, त्रस नाली और जो वायु का एक आदि की अपेक्षा आप लेते हैं तो त्रस नाली और पृथ्वी, पृथ्वियां सब आठों पृथ्वियां लेनी, और इन बिटवीन भी जो कोई हम देखते हैं ना, वायु का एक भी होते हैं, जल का एक भी कुछ होते हैं, हाँ, वायु का एक पर्याप्त भी होते हैं ना, बादर, बादर वायु का एक पर्याप्त तो हमने देखा पांच राज्यों तक होते हैं। तो यहाँ जो बता रहे हैं, परंतु उनकी तो यहाँ अपेक्षा लेनी ही नहीं वायु का ही, क्योंकि देव उसमें जाते ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं उनका रहने का ठिकाना कितना है? लोक का असंख्यात अभाव। परंतु मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा ही अनुत्कृष्ट वालों की स्थिति पूरा लोक होती है। उपपाद किसको कहा था हमने? यानी पूरे लोक में से मरकर यहाँ आने वाले जी, इनमें उत्पन्न होने वाले, तो वो पहला समय उपपाद का हो सकता है। या मारणांतिक में इनमें से मरकर पूरे लोक में कहीं भी जाएंगे तो वो बादर एकेंद्रिय कहेंगे जब तक मरण नहीं होता। और मारणांतिक कहाँ तक किया है? पूरे लोक में कहीं भी, तो इसलिए वो पूरा लोक घटित हो जाता है। किसकी अपेक्षा? अनुत्कृष्ट के पूरा लोक कब होगा? मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में। बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों के रहने का ठिकाना कितना है कहेंगे तो लोक का असंख्यात अभाव है। जो पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य मुनि की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त तथा बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के पहले समय में मुनि की उत्कृष्ट स्थिति होती है। हमने अद्धा छेद में देखा था उनकी स्थिति कितनी होती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस एक अंतर्मूर्त। अब यदि इनके वर्तमान स्पर्श का विचार किया जाए तो वह लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण प्राप्त होता है वर्तमान काल में। और अतीत कालीन स्पर्श का विचार किया जाता है तो वह सब लोग प्राप्त होता है, मनुष्यों में से इनमें उत्पन्न होने वाले। आप कहेंगे ये तो सूक्ष्म तो पूरे लोक में है, तो इनमें उत्पन्न होने वाले तो आप पूरा लोक कहो, पर उत्पन्न होने वाले जीव अल्प है ना, मनुष्य और तिर्यंचों में से यहाँ आने वाले हैं। और मनुष्य और तिर्यंचों में से भी वो कौन से लेने? पर्याप्त लेने, क्योंकि उत्कृष्ट सिद्धि बांध कर आने वाले हैं। और उनका भी मरण तभी होना चाहिए जब वो अंतर्मूर्त हो गया और इनमें उत्पन्न होना चाहिए। तो ऐसे जीव भले असंख्यात भी हो फिर भी उनका लोक का असंख्यात भाग ही क्षेत्र घटित होगा, पूरा लोक नहीं होगा उत्कृष्ट वालों का। वर्तमान की बात है, और अतीत काल की अपेक्षा तो कोई ना कोई जीव कहीं ना कहीं तो उत्पन्न हुआ ही है, तो पूरा लोक घटित होता है। अतीत कालीन स्पर्श का विचार किया जाता है तो वह सब लोग प्राप्त होता है। मानो बहन ख्याल में आता है क्या बात चल रही है? हाँ, असंख्यात भाग का समझ में नहीं आया। यहाँ क्या बात चल रही है कि जो कौन से जीवों की बात चल रही है? सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, और बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त हो, तो उनमें उत्कृष्ट स्थिति कब पाई जाती है? पहले समय में कौन से जीव के? मनुष्य या तिर्यंच? तिर्यंचों में भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त लेना और मनुष्यों में भी पर्याप्त मनुष्य लेना। जब उसने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया है और अंतर्मूर्त के पश्चात मरकर इनमें उत्पन्न हुआ है, तो ये जो कंडीशंस लगी और ये पहले समय में एकेंद्रियों के लेना, इसलिए उनका वर्तमान का क्षेत्र कितना है? लोक का असंख्यात बाबा। वो लोक में कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु सब जगह नहीं जाएंगे ना एट ए टाइम। एक समय में कितने हो गए जीव मरने वाले, और वो भी उत्कृष्ट स्थिति के साथ मरने वाले। हाँ, तो उस अपेक्षा से लेना। थोड़े जीव है, मरने वाले कितने हो गए, उनमें से एक इंद्रियों में जाने वाले कितने हो गए, और पूरे लोक में तो व्याप नहीं सकते तभी, इसलिए इनको कहा लोक का असंख्यात बाबा। परंतु ऐसा अतीत काल में पूरा होते आया है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक प्रदेश पर कहीं ना कहीं गया है जीव, उस अपेक्षा से पूरा लोक लेना। उत्कृष्ट स्थिति की बात चल रही है। यही सबब है कि यहां उक्त मार्गणाओं में उत्कृष्ट स्थिति वालों का वर्तमान स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और अतीत कालीन स्पर्श सब लोक प्रमाण बतलाया जाना संभव है। अतः उक्त मार्गणाओं में अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श सब लोक कहा। अनुत्कृष्ट में तो सब लोग घटित हो सकता है, परंतु उत्कृष्ट में नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट वाले जीव अल्प रहेंगे, उनके अलावा बाकी सब अनुत्कृष्ट। हम देखे ना, उनके असंख्यात गुणा हो गए, उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट असंख्यात गुणा हो गए। यहाँ बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त जीवों का सब लोग स्पर्श उपपाद और मारणांतिक पद की अपेक्षा ही जानना चाहिए, क्योंकि उनके रहने के ठिकाने में भी जैसे जहाँ बादर रहते हैं वहाँ ही है उन रहने का होगा, इसलिए उपपाद अवस्था में अन्य जगह से मरकर इनमें आए हुए जीव और मारणांतिक पद की अपेक्षा ही जानना चाहिए। पांचों सूक्ष्म स्थावरकाएं आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें यह व्यवस्था बन जाती है, अतः उनके कथन को उक्त प्रमाण कहा। पहले एकेंद्रियों में घटित किया है, वही बात काय की अपेक्षा, जीव तो वही के वही है, उनमें भी ऐसी बात घटित होती है। अब आगे पढ़ेंगे। सभी विकलेंद्रिय जीवों में मुनि की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति कब होती है? विकलेंद्रियों में। पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट स्थिति बांधकर यहाँ जीव जन्मा है, ऐसा जीव लेना। और वो विकलेंद्रिय कहाँ पर पाए जाते हैं? हाँ, कर्म भूमि में, उसका क्षेत्र भी अल्प हो जाता है, उस अपेक्षा से लेना उनको। तो वर्तमान क्षेत्र लोक का असंख्यात बाबा, किसका? उत्कृष्ट स्थिति वालों का, क्योंकि वो भी पहले समय में घटित होगा। हाँ? विकलेंद्रियों का रहने का स्थान केवल कर्म भूमि है, भोग भूमि तो नहीं ही पाए जाते हैं। हाँ, अभी हाँ, बीच वाले समुद्रों में तो कोई जीव ही नहीं है, वहां तो पंचेंद्रिय भी नहीं पाए जाते हैं बीच वालों में। लवण समुद्र, कालो नदी समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्रों में जलचर जीव पाए जाते हैं, और वहां पर ये विकलेंद्रिय भी होंगे उन समुद्रों में। और जहाँ यहाँ कर्म भूमि है, ढाई द्वीप तो है ही, उसमें भी कितने ही क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ भोग भूमि है, उनमें वो विकलेंद्रिय नहीं हो गए। विकलेंद्रिय नरकों में भी नहीं होते हैं। क्या? हाँ, संख्या की अपेक्षा चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय से ज्यादा है, बरोबर है। कौन से? सामान्य और अपर्याप्त, नहीं तो फिर उसका प्रमाण थोड़ा उल्टा पुल्टा है। अब यहाँ कहते हैं, सभी विकलेंद्रिय जीवों में मुनि की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोग के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया। जब सब लोग अनुत्कृष्ट की अपेक्षा कहेंगे, उत्कृष्ट तो पहले समय में, उसके पश्चात अनुत्कृष्ट होगा, तो मरण के समय में भी उनका अनुत्कृष्ट होगा, मारणांतिक में भी अनुत्कृष्ट होगा। तो अतीत काल की अपेक्षा विकलेन्द्रिय मरकर पूरे लोक में कहीं भी उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म एकेन्द्रियों में, तो इनका अतीतकालीन स्पर्श पूरा लोक बताया। परंतु वर्तमानकालीन लोक का असंख्यात अभाग कहा। इसी प्रकार पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक, उनमें भी वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस एक अंतर्मूर्त, पंचेंद्रियों में से इनमें उत्पन्न होने वाले जीव लेना है। उत्कृष्ट स्थिति बांधी अंतर्मूर्त में मरकर यहाँ आ गए। और त्रस लब्धि अपर्याप्तक जीवों के कहना चाहिए विशेषार्थ, सब विकलेन्द्रियों में उत्कृष्ट स्थिति उन्हीं के होती है जो संगी तीर्यंच और मनुष्यों में से आकर यहाँ उत्पन्न होते हैं। और उनकी भी कंडीशन क्या है, उत्कृष्ट स्थिति बांधनी चाहिए, उसके पश्चात वो स्थिति कांडक वगैरह स्थिति घात नहीं होना चाहिए, तो अंतर्मूर्त में यहाँ उत्पन्न हुए ऐसे जीव लेना। अतः इनमें उत्कृष्ट स्थिति वालों का दोनों प्रकार का स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा। उत्कृष्ट वालों का यानी अतीत कालीन भी लोक का असंख्यात भाग कहा। क्यों? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जो है, जो उत्कृष्ट स्थिति का बंद करने वाले हैं, वो भी कहां पाए जाएंगे? कर्म भूमि में, क्योंकि भोग भूमि वाले इतने उत्कृष्ट नहीं बंद करते हैं। और जहां वो मारणांतिक भी करेंगे तो भी वहीं का वहीं होगा, इसलिए वो पूरा लोक में नहीं करेंगे, क्योंकि वही मरकर विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय भी उन्हीं क्षेत्र में रहते हैं। आप कहेंगे ये पूर्व वाले स्वयंभू रमण समुद्र से उत्तर पश्चिम वाले में चले जाएंगे तो भी कितना ट्रैवल करेंगे, एक राज्य होगा, लोक का असंख्यात अभाग होगा। लोक कितना राज्य है? 343 घन राज्य है, और ये हम सिंगल लाइन में ऐसा देख रहे हैं। तथा सब विकलेन्द्रियों का वर्तमान स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है, और अतीत कालीन स्पर्श सब लोक है। अतीत काल में वो मारणांतिक की अपेक्षा सब लोक है, ऐसा भी ले सकते, उपपाद की अपेक्षा भी पूरा लोक है, अनुत्कृष्ट वालों को लेना है उसमें। हाँ, अतः इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का दोनों प्रकार का स्पर्श उक्त प्रमाण कहा है। यही व्यवस्था पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्तकों में बन जाती है, अतः इनके कथन को सब विकलेन्द्रियों के समान कहा। अब एकेन्द्रिय हुए, विकलेन्द्रिय हुए, भी पंचेंद्रियों की बात करेंगे। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श ओघ के समान है। ये कौन से जीव हो गए पंचेंद्रियों में? चारों गति के, मगर कौन से, क्या कर रहे? वो उत्कृष्ट स्थिति का बंद करने वाले जीव। हाँ, पंचे, हाँ लाते क्यों हो? आप कहते पंचेंद्रिय में से आने वाले, तो पंचेंद्रिय स्वयं उसका बंद कर रहे हैं, मरकर आने की अपेक्षा ही नहीं वहां पर, आप मरकर आने वाले ऐसा कहा? मैंने क्या कहा, पंचेंद्रिय स्वयं उतना बंद कर रहे हैं, तो वहां अन्य पर्याय में से मरकर आने वालों की बात ही नहीं है, वो स्वयं ही उत्कृष्ट का बंद करते हैं। उस समय वो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति हो जाती है, तो उनका स्पर्श ओघ के समान है। पंचेंद्रियों का कितना होगा जब वो बंद कर रहे हैं? तो बंद कितने, कौन सी अवस्था में करेंगे? पर्याप्त अवस्था में करेंगे, तो लोक का असंख्यात भाग होगा। यानी वो अतीतकालीन भी लोक का असंख्यातवा भाग होगा, क्योंकि जब एक इंद्रियों में उत्पन्न हो गए, हमने देखा अंतर्मूर्ति के बाद हो सकते हैं, मनुष्य तीरेंच मरकर देव और नार की तो एक इंद्रियों में जाएंगे नहीं, और तब उनका अनुत्कृष्ट हो जाएगा, एक समय उसमें से भी घट जाएगा। हमने देखा था ना उसकी उतनी ही स्थिति के साथ तो नहीं आएंगे, एक समय तो कम होगा उसमें से। अतीत काल की अपेक्षा कब होगा? हाँ 68 में, देखो विशेष अर्थ में 68 का अंतिम लाइन। अच्छा वो बिहार की अपेक्षा वहां उन्होंने लिए। मोनी की उत्कृष्ट स्थिति वालों का जो लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्श बतला है वो वर्तमान काल के मुख्यता से है, क्योंकि मोनी की उत्कृष्ट स्थिति सातों नारकों के नारकी ये पंचेंद्रिय 69 पर आ गए पहली लाइन में। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिरियंश पर्याप्त मनुष्य और 12वें स्वर्ग तक के देवों के ही संभव है, पर इन सबका वर्तमान क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही है। अब दूसरी जो बात दी है, त्रसनाली के 14 भागों में से जो कुछ कम 8 और कुछ कम 13 भाग स्पर्श बतलाया है वह अतीत काल की अपेक्षा बतलाया है वहां, क्योंकि हमने देखा था ना विहारवत वेदना कषाय और वैक्रेक हो वाले 8 भाग स्पर्श करते हैं, और मारणांतिक समुदात में मोनि की उत्कृष्ट स्थिति की अवस्था में मारणांतिक किया है तो नारकी मध्य लोक तक करेंगे। हाँ देव करेंगे ना पृथ्वी में, देव इन जनरल बात चल रही है, उत्कृष्ट बंद वाले जो है देव सौधर अभी सौधर्म ईशान वाले हैं वो कहां तक करेंगे? मारणांतिक, मारणांतिक पहली पृथ्वी में करें, 8वीं पृथ्वी में करेंगे ना, तो ऊपर कितना मरण के समय हो जाता है मारणांतिक, तो उस काल में वो बंद रहा है, मारणांतिक कर रहा है उस समय उसका उत्कृष्ट बंध चल रहा है। क्यों ऊपर 8वीं पृथ्वी कहां पर है? पंचेंद्र अभी देव पंचेंद्रिय है ना, वो मारणांतिक कर रहे हैं ना वहां पर। अभी तक हमने 9 राजू कैसे घटित किया था देवों में, नीचे 2 राजू गए और ऊपर। हाँ अभी शुक्ल लेशा वाले वो ऊपर के देव छोड़ दो आप, नहीं ना सौधर्म ईशान और भवनत्रिक कहां पर कहां तक करेंगे? यहां क्या कहा देखो, ये मोनी की उत्कृष्ट स्थिति कहां तक संभव है रहने वालों की अपेक्षा 12वें तक, तो वो भी पंचेंद्रिय हो गए ना। जब वो मारणांतिक कर रहे हैं वो तो पंचेंद्रिय कर रहे हैं, उत्कृष्ट स्थिति उन्हीं के होगी ना, करने वाले देव है। जब मारणांतिक है तब उनकी अवस्था देव पर्याय की है, तो अतीत काल की अपेक्षा कैसे घटित होगा? यानी वर्तमान में विहार की अपेक्षा 14 भागों में से 8 भाग, और अतीतकालीन में मारणांतिक की अपेक्षा 14 भागों में से 13 भाग, क्योंकि नारकी भी उत्कृष्ट अवस्था में अभी बंद कर रहे हैं तो वो भी आएंगे मध्यलोक में, और देव कोई जाएंगे 7वीं पृथ्वी में, 8वीं पृथ्वी में, 7वीं ने हाँ नीचे से 6, 7वें नरक में से आने वाले वो 6 राजो, और देव ऊपर जाने वाले वो 7 राजो। ओ भोग के समान जो लिखा था यहाँ पर पंचेंद्रियों में, फिर पढ़ते हैं ओग के समान। अभी हमने देखा था ना उत्कृष्ट, वर्तमान में लोक का असंख्यातवा भाग और विहार की अपेक्षा 14 भाग में से 8 भाग, 8/14 भाग। हाँ, यानी त्रसनाली का भाग करना, ये लोक का भाग नहीं लेना। 8/14 स्क्वायर राजू, घन राजू कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श लोक का असंख्यातवा भाग, ये वर्तमान की अपेक्षा, रहने की अपेक्षा, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण विहार की अपेक्षा, और सब लोक है ये मारणांतिक की अपेक्षा। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, विभंग ज्ञानी, चक्षु दर्शनी और संगी जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ, पंचेंद्रियादि 4 मार्गणाओं में, यानी पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, रस और त्रस पर्याप्त, अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श 3 प्रकार का बतलाया, लोक का असंख्यातवा भाग, त्रसनाली के 14 भागों में से 8 भाग और पूरा लोक। लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्श वर्तमान काल की अपेक्षा से बतलाया है, क्योंकि जितने क्षेत्र में उक्त मार्गणा वाले जीव निवास करते हैं उनके वर्तमान क्षेत्र का प्रमाण लोक के असंख्यातवे भाग से अधिक नहीं प्राप्त होता। निवास करते हैं के बाद वो दंड नहीं चाहिए, कॉमा चाहिए। ये वर्तमान का क्षेत्र निवास की अपेक्षा, जिसको हम स्वस्थान स्वस्थान कहते हैं, लोक का असंख्यातवा भाग है। अब कहते हैं कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण स्पर्श विहारवत स्वस्थान आदि की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि इन जीवों के ये पद 2 राजू नीचे और 6 राजू ऊपर, इस प्रकार 8 राजू क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। देवों की अपेक्षा से यहाँ विहार की बात की है। तथा सब लोग प्रमाण स्पर्श मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा से कहा है। ये पूरा लोक कहाँ कहाँ घटित होगा? मनुष्य तिर्यंचों में होगा। देव और नार के मरकर तो पूरे लोक में, वो तो मध्य लोक में आएंगे। पंचेंद्रिय में पूरा लोक कहते हैं तो मनुष्य तिर्यंच पंचेंद्रिय मरकर या मारणांतिक करके वहां तक पहुंचते हैं, उनकी अपेक्षा लेना। तथा सब लोग प्रमाण क्षेत्र मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा से कहा है। कुछ और मार्गणाएं हैं जिनमें उक्त व्यवस्था ही प्राप्त होती है, जैसे पांचों मनोयोगी आदि, जहां यही बात घटित होती है। काय मार्गणा के अनुवाद से ये इंद्रिय मार्गणा समाप्त हुए, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय देखे। अब काय मार्गणा में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? काय मार्गणा के अनुवाद से पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त, जल कायिक, बादर जल कायिक, बादर जल कायिक पर्याप्त, वनस्पति कायिक, बादर वनस्पति कायिक, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर और बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों में मुनि की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन एकेंद्रियों के समान है। ये उत्कृष्ट स्थिति वाले कौन हो गए? हमने देखा था देवों में से आके एक समय में आने वाले, तथा तो ये लोक का असंख्यातवा भाग होगा, हम देखे आए ना अभी। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन सब लोक है, क्योंकि इनमें से मारणांतिक की अपेक्षा अनुत्कृष्ट होती है, तब तो पूरे लोक में कहीं भी उत्पन्न होते हैं। इतनी विशेषता कि उक्त 3 प्रकार के पर्याप्त जीवों में अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन लोक का असंख्यातवा भाग और सब लोक है, उनका वर्तमान स्पर्शन लोक का असंख्यातवा भाग और अतीतकालीन स्पर्शन पूरा लोक। बांदर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, बांदर जल का एक अपर्याप्त, अग्नि का एक अपर्याप्त, वायु का एक अपर्याप्त और बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवों में जहां वे देव उत्पन्न नहीं होते ऐसी मार्गणाएं ली हैं। मोनिय की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने अब वहां नहीं उत्पन्न होते तो उत्कृष्ट कैसी होती है, उन मार्गणाओं के लिए उत्कृष्ट। अंतर्मूर्त पश्चात यहां आने वाले जो है मनुष्य तिरियंचों में से उनको लेना, देव में से तो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? हाँ, ये अग्नि और उसमें नहीं आते। यहाँ पृथ्वी का एक लिया पर वो अपर्याप्त लिया, देव अपर्याप्तों में नहीं जन्मते इसलिए उसको भी छोड़ा। ऐसे जीवों ने, उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात वे भाग, उनका रहने का ठिकाना लोक का असंख्यात भाग और सब लोक का स्पर्श किया है। इतनी विशेषता है कि बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, बादर जल का एक अपर्याप्त, बादर अग्नि का एक अपर्याप्त, बादर वायु का एक अपर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवों के सर्वलोक स्पर्शन नहीं है। उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति कब होती है? इनमें अन्य से मरकर आए हुए जीव और उनके रहने का भी ठिकाना तो लोक का असंख्यात अभाव है। मारणांतिक करेंगे तो भी तब वो अनुत्कृष्ट हो जाती, उत्कृष्ट नहीं होती, इसलिए लोक का असंख्यात भाग ही घटित होता है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले उक्त जीवों का स्पर्शन सब लोक है, क्योंकि मारणांतिक करते तब अनुत्कृष्ट पाई जाती है इसलिए वहां तो सब लोग घटित होता है। बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों में, हमेशा इनकी बात अलग से देते हैं क्योंकि उसका लोक का संख्यात व भाग क्षेत्र होता है। बादर वायु का एक पर्याप्त, अपर्याप्तों का नहीं, वो विक्रिया करने वाले पर्याप्त होते हैं। तो बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों में मोनिय की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात में भाग और सब लोक का स्पर्शन किया है। असंख्यात वालिया अलग से क्यों बताए? फिर पृथ्वी का एक अपर्याप्तों में विशेषार्थ में क्या लिया? यद्यपि बादर वायु का एक परिजीव लोक के संख्यात विभाग का सब लोग मोनी की उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा विचार करते तो लोक के संख्यात विभाग के स्थान में लोक का असंख्यात भाग प्रमाणित स्पर्श प्राप्त होता है। विशेषार्थ में आएगी ये बात, आगे 75 पेज में निकालना। विशेषार्थ का नीचे से 3, 3, 6, 7वीं लाइन जो हमें अभी शंका होती ना उसका उत्तर वहां है, पढ़ते वहां से पहले। यद्यपि बादर वायु का एक पर्याप्त जीव लोक के संख्यात वे भाग का और सब लोक का स्पर्श करते हैं मान नंदी की अपेक्षा, किंतु अब यहां बात किसकी चल रही है? मोनिय की उत्कृष्ट स्थिति, मोनिय की उत्कृष्ट स्थिति का स्थिति की अपेक्षा जब विचार करते हैं तब उनका लोक के संख्यात वे भाग के स्थान में लोक का असंख्यात भाग प्रमाण ही स्पर्श प्राप्त होता है, क्योंकि जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच या मनुष्य मोनिय की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके पश्चात बादर पर्याप्त वायु कायिकों में उत्पन्न होते हैं, मिला ना, उनके वर्तमान कालीन स्पर्श का योग लोक का असंख्यात भाग प्रमाण ही होता है। वर्तमान काल में वो उत्कृष्ट स्थिति के साथ वाले जो जीव है वो कम हो जाएंगे तो लोक का असंख्यात भाग घटित होगा। हाँ, यदि अतीतकालीन उपपाद की अपेक्षा इसका विचार करते हैं तो वह सब लोग बन जाता है। उपपाद की अपेक्षा, हाँ उत्कृष्ट की अपेक्षा तो नहीं बनेगा क्योंकि सूक्ष्म में से यहाँ कैसे आएंगे। यहाँ उत्कृष्ट की बात चल रही थी। यहाँ बताए उन्होंने वो सब लोग है, देखो जो अभी हम पढ़ के आए हैं नीचे से छठी लाइन जहां से हमने पढ़ना 74 पृष्ठ पर, बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग और सब लोक का स्पर्शन किया है। उपपाद करने वाले तीन लोक में कैसे? अतीतकालीन उपपाद की अपेक्षा इसका विचार करते तो वह सब लोग बन जाता है। आपका कहना है वातवले में जन्म लेने वाले उनका उपपाद की अवस्था में वातवले उनकी अपेक्षा ले रहे हैं, ठीक है। हाँ अभी हम वो सब लोग का स्पर्शन जो है वो उपपाद की अपेक्षा बताया है, यानी उपपाद यानी जन्म लेने वाले। जन्म लेने वाले कौन है? मनुष्य तिर्यंचों में से ही मरकर जाने वाले। हाँ अभी हमने जो पढ़ा था उपपाद की अपेक्षा बादर अग्नि का एक पर्याप्त जीव में, अभी अग्नि कायिकों की अलग से बात कर रहे हैं। 74 पृष्ठ नीचे से तीसरी लाइन में आ गए हम। मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अब यहाँ सब लोक नहीं कहा। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव ने लोक के असंख्यातवे भाग और सब लोग का स्पर्शन किया। सब लोग जब कहते हैं तो उसमें तो मारणांतिक लेना है, अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का सब लोग विशेषार्थ। हमने केवल नीचे का विशेषार्थ पढ़ा था, अभी पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पृथ्वी का एक आदि में उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श एकेंद्रियों के समान बतला कर भी अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श अलग से बतलाया है। उसका कारण यह है कि उपर्युक्त मार्गणाओं में से कुछ में तो अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का दोनों प्रकार का स्पर्श सब लोग बन जाता है, पर उनके पर्याप्तकों में वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त आदि जीवों ने वर्तमान में लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का ही स्पर्श किया है, यानी उनका कहाँ पाए जाते हैं तो इतने ही भाग में पाए जाते हैं। बस इतनी विशेषता के लिए ही उक्त मार्गणाओं में अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श अलग से कहा है। वो मरकर जाने वालों की अपेक्षा वो अलग से बताया। बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त आदि जीवों में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति उन्हीं जीवों में प्राप्त होती है जो संगी तिर्यंच या मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति बांधकर पश्चात इनमें उत्पन्न होते हैं। अब यदि इनके वर्तमान और अतीत स्पर्श का विचार करते हैं तो वह लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। अतः यहाँ उक्त मार्गणाओं में सब लोक प्रमाण स्पर्श का निषेध किया है पृथ्वी का एक अपर्याप्त आदि में। यद्यपि बादर वायु का एक पर्याप्त जीव लोक के संख्यातवे भाग का और सब लोग का स्पर्श करते हैं, किंतु मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा विचार करते हैं, तब उनका लोक के संख्यात्वय भाग के स्थान में लोक का असंख्यात्वा भाग प्रमाण ही स्पर्श प्राप्त होता है। उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव कम है उस अपेक्षा से, क्योंकि जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचया मनुष्य मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति का बंद करके पश्चात बादर पर्याप्त वायु कायिकों में उत्पन्न होते हैं, उनके वर्तमान कालीन स्पर्श का योग लोक का असंख्यात्वा भाग प्रमाण ही होता है। हाँ, यदि अतीत कालीन उपपाद की अपेक्षा इसका विचार करते हैं तो वह सब लोग बन जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। काय मार्गणा चल रही है ना, वो हो गई काय मार्गणा। त्रस की बात तो पहले किए थे, अब यहाँ योग की बात चलेगी। वैकृत काय योगी, ये वैकृत काय योग काय मार्गणा है क्या? योग मार्गणा है। हाँ, वैकृत काय योगी जीवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने, वैकृत काय में उत्कृष्ट कौन है? बांधने वाले हाँ, नारकीवादे। और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? तो वैकृत काय योग वाले ने देवनारकी कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं? लोक का असंख्यात्वा भाग। और फिर विहार की अपेक्षा कहना है तो हाँ, लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का तथा त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग ये विहार की अपेक्षा और कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, ये वैकृत काय योगी लिए है। तो दोनों लेना, नारकी और देव। उत्कृष्ट स्थिति में जब मारणांतिक करते हैं, ऊपर 7 राजू और नीचे से मध्यलोक तक 6 राजू। कार्मण काय योगियों में मोहनीय की एक कार्मण काय योगी में कभी होगी विभक्ति? विग्रह गति। कार्मण काय योग कब होता है? विग्रह गति में। गुणस्थान कौन कौन से है? 1, 2, 4। वो 13 को नहीं लेना है, विभक्ति वाले लेना है। और उत्कृष्ट स्थिति वाले कौन हो गए? तो मिथ्या दृष्टि हो गए, है ना। कार्मण काय योग में उत्कृष्ट किसके होगा? मिथ्या दृष्टि को। अब उस अवस्था में तो उत्कृष्ट बंध नहीं कर रहे, तो मरने के पहले वो उत्कृष्ट बंध वाले जो कार्मण काय योग के पहले समय में उत्कृष्ट वाले हो गए। तो यहाँ क्या कहते हैं? कार्मण काय योगियों में मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति का बंद करने वाले कौन है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। अभी जो हमने नारकी और देवों में घटित किया है वही लेना है यहाँ पर। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने, कार्मण काय योग में अनुत्कृष्ट वाले हैं, सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि वो उत्कृष्ट के अलावा बाकी पूरे जितने लोग जीव है वो सारे अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हैं। आभिनिबोधि ज्ञानी, शत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में मोहनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने, वो अस्पष्ट दिख रहे जी, और लोक में उसके मात्रे दिख नहीं रहे, लोक के असंख्यातवे भाग और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। किसकी बात चल रही है? इन्हें समय दृष्टि है, उनकी उत्कृष्ट स्थिति कब लेंगे? हाँ हाँ, याद है। हाँ हाँ हाँ, याद है क्या? नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी का बंद किया है और अंतर्मुहूर्त के बाद वेदक समय दृष्टि हुआ है, तो स्थिति घात के बिना हुआ ना। अंतर्मुहूर्त कम 70 कोड़ा कोड़ी सागर देखा था हमने। तो ये लोग के असंख्यात विभाग तो उनके उसकी बात कैसे होगी, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चल रही है, विभंग की बात नहीं चल रही है। यहाँ अपना क्राइटेरिया अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुति ज्ञानी अवधि ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों में उत्कृष्ट स्थिति की बात चल रही है। तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध किया 70 कोड़ा कोड़ी सागर, एक अंतर्मूर्त के पश्चात वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, ऐसा जीव लेना यहाँ पर। हाँ नहीं नहीं नहीं, नारकी मरकर तिर्यंच मनुष्यों में उत्पन्न होने, हाँ एक समय कम 70 कोड़ा कोड़ी, वो देव भी जाएंगे एक केंद्रों में और नारकी आएंगे मनुष्य तिर्यंचों में कहीं। देखो ये लोक का असंख्यात भाग क्यों कहा ख्याल में आया, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति के साथ वेदक सम्यक प्राप्त करने वाले हैं, वो तो पंचेंद्रियों में ही होता है ना, वो तो लोक का असंख्यात भाग तो घटित होता ही है। त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, हाँ विहार के काल में, विहार के काल में नहीं, वहां विहार करके वहां गया है और वहां उन्होंने सम्यक प्राप्त किया। इसी प्रकार अवधि दर्शनी सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। आप कहेंगे उपशम सम्यक दृष्टि में इतना कैसे हो सकता है, वो मार्गणा की अपेक्षा उत्कृष्ट कब होगा, उनके पहले समय में, उपशम सम्यक के पहले समय में, वो भी चौथे में जाने वाले के, क्यों पांचवे में गया तो क्या होगा, मिथ्या तो में से पांचवे में गया उपशम के साथ तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति होगी कि नहीं होगी, और सातवें में गया तो क्या होगा, क्यों नहीं, उसके कांडक बड़े बड़े होते, ये कांडक घातों का प्रमाण अलग है। पहले से पांचवें में जाने वाले के कांडक बड़े होते हैं, उनकी स्थिति और घटती है, पहले से सातवें में जाने वाले के, हाँ ये शुरू से ही उसमें ऐसे प्रोसेस होते हैं। कोई जीव कहते ना चौथे पांचवें को टच करते करते ऊपर, ऐसा नहीं है, वो अधिक विशुद्धि के साथ उनके कांडक भी बड़े बड़े होते, कांडक घात। यहाँ क्या कहते देखो, अभिनिबोधि की बात देखी हमने, वो हम उपशम सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे थे और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। कल हमने सम्यक मिथ्या दृष्टि में जघन्य स्थिति की बात की थी अंतिम समय में, अब ये उत्कृष्ट स्थिति कब होगी, मिथ्यात्व में से आए, मिथ्यात्व में उत्कृष्ट बंध किया है और फिर बाद में अंतर्मूर्त में वो सम्यक मिथ्यात्व में आया है, ऐसा जीव लेना। विशेषार्थ वैकृत का योग में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श तीन प्रकार का बतलाया है। लोक के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्श वर्तमान काल की अपेक्षा बतलाया है, क्योंकि वैकृत का योग वालों का वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यात भाग प्रमाण ही है। अतीत काल की कालीन स्पर्श पद विशेषों की अपेक्षा दो प्रकार का, पद विशेष यानी जो हमने 10 पद देखे थे उनमें जो कोई पॉसिबल है, वे वैक्रिक काय योग वाले जीवों में कौन कौन से पद नहीं होंगे, फिर प्रश्न, वैक्रिक काय योग वाले जीवों में कौन कौन से पद नहीं होंगे, तेजस आरक और बस उतने ही, हाँ विहार तो होगा बताए उन्होंने, वैक्रिक क्यों नहीं होगा, होगा वैक्रिक का योग वाले ही है, वैक्रिक तो होगा ही होगा, बोलो देवेंद्र भाई मदद करो, उपपाद नहीं होगा, 10 पद में वैकृत मिश्र नहीं आता, उपपाद की बात है, उपपाद यानी पहला समय, समय तो कोई कार्मण का योग में होगा, कोई डायरेक्ट वैकृत मिश्र में जाएगा, उपपाद वाला भी नहीं होगा, ख्याल है ना, तो यहाँ क्या बताते हैं, अतीतकालीन स्पर्श पद विशेषों की अपेक्षा दो प्रकार का है, कुछ कम 8/14 राजू, ये विहार की अपेक्षा है। वो विक्रिया करके ही विहार करके जाते हैं ना, मूल शरीर तो वहीं पर बैठता है और विहार करते तो विक्रिया वैक्रियक शरीर के द्वारा उनका विहार चलता है। और कुछ कम 13/14 राजू, 13/14 राजू जो हमने देखा था वो किस काल में, मारणांतिक के काल। इनमें से पहला विहारवत स्वस्थान, देखो बताने वेदना कषाय और विक्रियक पदों की अपेक्षा कहाँ है, यानी कुछ कम 8/14 और कुछ कम 13/14 जो विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय और विक्रियक, और दूसरा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कहाँ है। कार्मण कायोगियों का स्पर्श यद्यपि सब लोक है, कार्मण कायोग वाले कहाँ है, वर्तमान में पूरे लोक में, फिर भी किंतु यहाँ उत्कृष्ट स्थिति वालों का वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग है। उत्कृष्ट स्थिति वाले कौन है, तो उत्कृष्ट स्थिति के साथ जो मरकर अभी अन्यत्र जा रहे हैं। और अतीतकालीन स्पर्श कुछ कम 13/14 राजू हैं, क्योंकि मोनी की उत्कृष्ट स्थिति संगी पर्याप्त के ही होती है। अब यदि ऐसे जीव दूसरे समय में मरकर, जिसने उत्कृष्ट स्थिति बांधी है और दूसरे समय में मरकर कार्मण कायोगी होते हैं, तो उनका वर्तमान स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग से अधिक नहीं प्राप्त होता, इसलिए यहाँ वर्तमान स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग कहा। तथा उत्कृष्ट स्थिति वाले कार्मण कायोगियों ने अतीत काल में नीचे कुछ कम 6 राजू और ऊपर कुछ कम 7 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये हमने देखा था, ऊपर यानी 8वीं पृथ्वी में मारणांतिक करने वाले और नीचे 6 राजू यानी 7वें नरक के नार के मारणांतिक करने वाले, ऐसे लेना। अतः इनका अतीतकालीन स्पर्श कुछ कम 13/14 राजू कहा। आभिनिबोधि ज्ञानादि मार्गणाओं में उन मार्गणा का जो स्पर्श है वही यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा जानना चाहिए। वो हमने अभी देखा था, वैदिक समय दृष्टि में उत्कृष्ट होता है, अनुत्कृष्ट तो अन्यत्र होता है। संयता संयत जीवों में एकदम योग में से वहां चले गए, जहां जो विशेषता है उसको बता रहे। संयता संयत जीवों में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। ये संयता संयत जीव कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, अनुत्कृष्ट में आप, अच्छा यहाँ जो अभी अभी निगोद भी, उसमें हमने देखा था ना, देखो मूल में देखो, अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में मोनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, ये 129 नंबर का पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं, 75 पृष्ठ विशेषार्थ के ऊपर की चौथी लाइन। अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी जीवों में मोनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग, यहाँ तक समझ में आया, और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। तो आपका क्या प्रश्न है अभी, छठे नरक से, हाँ कुछ कम 8 राजो, ये इतना ही लिया उन्होंने, अभिनिबोधित ज्ञानी का क्षेत्र कितना है, क्षेत्र में निकालो। वैक्रिय कायों की अपेक्षा कहाँ चल रही है यहाँ पर? मार्गणा चल रही है, वो ज्ञान मार्गणा चल रही है। लेना पड़ेगा तो यहाँ क्यों नहीं कहा? मार्गणा की जो बात है ना, क्षेत्र की बात, स्पर्शन की, जो सामान्य से जो स्पर्शन की बात है, स्पर्शन दबला में देख लेना आप, उनका स्पर्श कितना बताया, कल फिर चर्चा करेंगे इसकी। अभिनिबोधित ज्ञानादि मार्गणाओं में उस मार्गणा का जो स्पर्श है वही यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति अपेक्षा जानना चाहिए। उत्कृष्ट की तो बात समझ में आती है। हाँ, यहाँ मेजॉरिटी की बात की जाती है ना, तो उसमें वो घटित होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, संयता संयत की बात पढ़ रहे थे। तो संयता संयत वाले कहाँ पाए जाएंगे? मनुष्य और तिर्यंच, कर्म भूमि के, है ना? तो उसमें उत्कृष्ट स्थिति किसके होगी? हाँ, अंधक कोड़ा कोड़ी, पर कभी पहले समय में होगी, बाद में तो घटती चली जाएगी। तो स्पर्श क्षेत्र के समान है, यानी कितना है, लोक का संख्यात्व भाग है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्व भाग, ये वर्तमान की अपेक्षा, और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। हाँ, मारणांति कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक? 16वें तक, 16वें तक जाते, संहिता से 16वें तक जाते। इसी प्रकार शुक्ल लेशा वाले, शुल्क हुआ, शुक्ल लेशा वाले जीवों का स्पर्श है। पीत लेशा वाले जीवों का स्पर्श सौधर्म के देवों के समान है। तथा पद्मलेशा वाले जीवों का स्पर्श सहस्रार स्वर्ग के देवों के समान है। उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट तो हम गठित करेंगे। उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले वो उत्कृष्ट है, फिर उनका स्वस्थान लेना, उनका विहार व्रत लेना, और पित्तलेशा वाले मारणांतिक भी लेना, उनका सौधर्म ईशान वाले ऊपर तक मारणांतिक करेंगे, उनको लेना। कृष्ण नील और कापोत लेशा वालों में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? तो कृष्ण नील कपोत में उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधता है? कृष्ण नील और कापोत में बांधने वाला लेना, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। और कृष्ण नील कपोत है तो नारकी भी लेने, मनुष्य भी लेने, तिर्यंच भी लेने, उत्कृष्ट स्थिति बांध रही है। हाँ, देव तो नहीं लेना है। हाँ, तो लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का तथा त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 6, 4 और 2 भाग प्रमाण, 2 करना उसे, 2 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये अलग अलग लेशा कहाँ तक होती है, नरकों की अपेक्षा ली है। हाँ, कृष्ण जो है 7वें नरक में, उसका नीचे तक 6 राजू है, नील में 4 राजू नीचे तक, यानी 5वां नरक, और कपोत में 2 राजू नीचे, तीसरे तक लेना। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, क्योंकि पूरे सभी एकेंद्रियों में ये तीनों ही लेशा पाई जाती है, तो ये पूरा ही लोक उनका अपना अपना क्षेत्र है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों में मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है, होगा लोक का असंख्यात अभाव। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने बराबर करो जरा स्पष्ट, कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग तथा त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। लोक का असंख्यात भाग तो रहने का उनका ठिकाना और विहार की अपेक्षा 14 में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण। सासादन सम्यक दृष्टि जीवों में मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने, ये सासादन में उत्कृष्ट कौन होगा? सासादन का पहला समय वाला जो कुछ है, लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, वही विहारवत वाला लेना इसमें। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये 12 क्यों लिए? नीचे कहां से आएंगे? हाँ, क्या कहा आपने? हाँ, मरण करके कहां तक के नार के? छठे के। सातवें वाले तो मिथ्या तो में मरेंगे। हाँ, तो नीचे 5 राजू लेना है। हाँ, नीचे 5 राजू और ऊपर 7 राजू मारणांतिक की अपेक्षा। सासादन में मारणांतिक मर के या उसके देवलोक में नवे ग्रह से नीचे आने वाला। अच्छा, ऐसा भी लेंगे मारणांतिक करने वाले? वो भी पृथ्वी में करेंगे, सौधर्म ईशान वाले। सासादन में मरकर नारकी जीव मध्यलोक में आते हैं, तो यह सासादन के बाद मिथ्या तो में जाने वाले होंगे, तो भी वो सासादन में मारणांतिक तो कर सकते हैं ना, उस अपेक्षा लेना यहां पर। और ऐसा भी हमने देखा था कि सासादन में भी पृथ्वी कायिक में उत्पन्न होने वाली एक मान्यता है, दो मान्यता है, पर्याप्त पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न होने वाले ऐसा भी मानते हैं, या ऐसा भी ले सकते हैं ना कि उन्होंने एक मिथ्यात्व में जाने के बाद मरा, परंतु उसके पहले मारणांतिक तो सासादन में हुआ। कौन से? नहीं नहीं, वहां तो एक मिथ्यात्व में आएंगे फिर आयु बांधेंगे, इस तरह से वो लंबी बात चलती है, क्योंकि सासादन में कौन सा आता है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला आता है, तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला आया है तो फिर सासादन में जाएगा, मिथ्यात्व में जाएगा, फिर आयु बांधेगा, फिर अंतर्मुर्त बीतेगा, फिर मरण होगा, तो उसका मारणांतिक उस अवस्था में नहीं होता, ना मरण होता है सासादन में, मिथ्यात्व के अलावा अन्य गुणस्थानों में मरण नहीं होता, मारणांतिक भी नहीं होता सातवें नरक के लिए। असंगी जीवों का स्पर्श एकेंद्रियों के समान है, आप ग्रेवेक से लाते हो नीचे, उसका भी अंत कोड़ा कोड़ी, रूपशम वाले का भी अंत कोड़ा कोड़ी, अनुत्कृष्ट के लिए, उत्कृष्ट में तो 8 भाग प्रमाण ही लिया है, अनुत्कृष्ट में 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 12 भाग, हाँ नीचे 5 राजू और ऊपर 7 राजू। ग्रेवेक कितने राजू ऊपर है? 6 राजू तक तो 16 सर्ग हुआ ना, तो 6 एंड हाफ हो गए ना, 6.5 हो गए, तो उस एक राजो में ग्रेवेक है, अनुदिश है और अनुत्तर है, तो 7 राजू कैसे होगा, 12 राजू कैसे होगा, पृथ्वी कायकों में किए बिना 12 राजू घटित कैसे होगा? मेरा सवाल ख्याल में है? चलो यहाँ कुछ लिखा होगा तो देखेंगे। संयता संयत के, संयता संयत से वहां उन्होंने विशेषार्थ में ले लिया है। मुनि की उत्कृष्ट स्थिति इन गुणस्थानों को प्राप्त होने के पहले समय में होती है। गुणस्थान को चाहिए, पर उस समय मारणांतिक समुद्घात संभव नहीं, अतः इन दोनों मार्गणाओं में कौन से दो मार्गणा ली? उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग कहा और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श इन मार्गणाओं के स्पर्श के समान ही कहा। मेरे ख्याल से वो हाँ, 3 शुभ लेशा ली। कृष्ण लेशा में उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श 7वें नरक की मुख्यता से, नील लेशा में उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श 5वें नरक की मुख्यता से और कपोत लेशा में उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श 3रे नरक की मुख्यता से कहा है। सासादनों में उत्कृष्ट स्थिति वालों का जो कुछ कम 8/14 राजू स्पर्श बतलाया है वह देवों की प्रधानता से कहा है। विहार की बात है ये, 8/14 तो विहार की बात है। हाँ तो उत्कृष्ट स्थिति कब होगी? जब उत्कृष्ट स्थिति बांध रहे हैं। यहाँ क्या कहा? सासादनों में नहीं, यह सासादन की बात है। सासादन में उत्कृष्ट कितनी है? तभी पहले समय में होती है। वो तो हमने जैसा देखा उपशम सम्यक नीचे 2 राजू तक उन्होंने को देवों को बताया है, तो वहां जाने पर उन्होंने प्राप्त किया समझ से और वहीं पर सासादन हुआ, तो विहार की अपेक्षा वो कहाँ तक स्प्रेड है उनके? तो 8 भाग में विहार की अपेक्षा ही होगा यहाँ पर। दूसरी बात, उन्होंने कुछ कम 12 की बात यहाँ उन्होंने विशेषार्थ में ली नहीं है। कुछ कम जो 8 है, कुछ कम 8 में तो नीचे के 1000 योजन छोड़ते हैं। अनुदिश अनुत्तरों में नहीं है, ग्रेवेक तक है, बराबर है ना? हाँ, तो यहाँ 12 लिया है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है वो पृथ्वी कायकों में मारणांतिक करने वाले जीव ले सकते हैं यहाँ पर। और देव कहाँ जाएगा? मरने की बात कहाँ है? मारणांतिक की चल रही यहाँ पर, सासादन में मारणांतिक कर रहा है। हम तो कहेंगे मिथ्यात्व में जाके मरेगा, ख्याल है ना? इस प्रकार उत्कृष्ट स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ। अब जघन्य स्पर्शनानुगम, अब ये ऐसा सोचना है कि जघन्य स्थिति के रहते हुए स्पर्श कितना है। तो ओघ में जघन्य स्थिति कब होती है? दसवें के अंत में। तो लोक का असंख्यात्वाभाग और स्पर्शन की अपेक्षा, अतीत काल की अपेक्षा, वो भी उतना ही होगा। देखो अभी हम पढ़ेंगे। अब जघन्य स्पर्शनानुगम का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मोहनीय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है, लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का स्पर्श है। और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने सर्व लोक का स्पर्श किया है, जो जघन्य नहीं वो सब अजघन्य है, तो पूरे लोक में है। क्योंकि ये संख्यात जीव छोड़ेंगे तो बाकी सभी पूरे लोक के अनंत जीव तो वंश में है। इसी प्रकार यही जो कथन है लोक का असंख्यातवा भाग और पूरा लोक, का योगी, अवदारिक का योगी, नपुसक वेदी, क्रोधादि चारों कषाय वाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवों के कहना चाहिए। ये अभव्य को क्यों छोड़ा? हाँ, ये जघन्य और अजघन्य की तो बात घटित होगी, जघन्य की घटित नहीं होगी। यहाँ जहाँ दोनों ही घटित होते ऐसे मार्गणाएं ली हैं। विशेषार्थ, ओघ से मोहनीय की जघन्य स्थिति क्षपक श्रेणी में प्राप्त होती है और क्षपकों का स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है। यहाँ ओघ से जघन्य स्थिति वालों का स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाया है तथा अजघन्य स्थिति वालों का स्पर्श सब लोक है, यानी वो वर्तमान में कहो या अतीत काल की अपेक्षा पूरा लोक होगा और जघन्य वालों का भी अतीत काल की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यातवा भाग ही होगा। क्योंकि क्षपक कहाँ होंगे? मनुष्य लोक में, वो भी कर्मभूमि वाले, वो भी आर्यखंड वाले। अभी से लगा देना उसमें। मूल में गिनाई गई का योगी आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें ओग के समान स्पर्श बन जाता है लोक का असंख्यातवा भाग और पूरा लोक, ये दोनों ही जिन मार्गणाओं में घटित होता है ऐसी मार्गणाएं बताई हैं। अतः उनके कथन को ओग के समान कहा है। आदेश निर्देश की अपेक्षा अभी अन्य अन्य गतियों में इंद्रियों में बताएंगे। नारकियों में मोहनीय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है, कितना होगा? लोक का असंख्यातवा भाग। जघन्य कब होता है? थोड़ा उल्टा विचार, असंगी में से पहले नरक में आया हुआ वो जघन्य स्थिति के साथ विग्रह के दूसरे समय में। हाँ, बाकी के नरकों में लास्ट समय। तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के समान है, कितना होगा? वर्तमानकालीन लोक का असंख्यातवा भाग होगा और अतीतकालीन 14 भाग में से 6 भाग होगा। पहली पृथ्वी में स्पर्श क्षेत्र के समान है लोक का असंख्यातवा भाग तथा दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में मोहनीय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है, यानी लोक का असंख्यातवा भाग है। क्योंकि हमने देखा था अपनी अपनी नरक में उत्कृष्ट आयु लेकर जन्मे हैं, शुरू के अंतर्मूर्त के बाद प्रथमोपशम या सम्यक तो प्राप्त किया कहेंगे और फिर अंतर्मूर्त में विसंयोजना की और आयु के अंत में जाकर मोहनीय की जघन्य स्थिति होगी। तो वो अपने अपने रहने के ठिकाने में लेने उनको, तो लोक का असंख्यातवा भाग होगा। तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के स्पर्श के समान है, यानी उसका वर्तमान कालीन तो लोक का असंख्यातवा भाग होगा और अतीत कालीन, हाँ, जो नरक जहां तक है तो 6 भाग, 5 भाग, 4 भाग, 3 भाग, 2 भाग, इस तरह से और एक राजू तक। नारकियों में मोहनी की जघन्य स्थिति वालों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाया है। स्पर्श भी उतना ही प्राप्त होता है क्योंकि जो असंगी नरक में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं नारकियों के विग्रह के दूसरे समय में जघन्य स्थिति होती है। किंतु असंगी जीव पहले नरक में ही उत्पन्न होते हैं और पहले नरक का स्पर्श लोक के असंख्यात भाग से अधिक नहीं है। हमने देखा ना, वो पहले नरक का स्पर्श का अर्थ क्या है? पहले नरक में उत्पन्न होने वाले हो या मरकर अन्यत्र मारणांतिक करने वाले हो, तो वो पहला नरक कितना नीचे है? हमने कल देखा था 180,000। अभी वो उससे में भी 1,000 योजन माइनस कर देना, तो इतने ही ऊपर उसका होगा। यहां से मध्य लोक में ही होगा उनका, तो वो तो लोक का असंख्या तो अभागटित होता है। अतः सामान्य नारकियों में जघन्य स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान बताया। अजघन्य स्थिति वालों में जघन्य स्थिति वालों को छोड़कर शेष सबका समावेश हो जाता है। ये उत्कृष्ट वाले भी सब क्या कहलाएंगे? अजघन्य। अतः सामान्य से अजघन्य स्थिति वालों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान बतलाया है। वहां भी अनुत्कृष्टों की मेजॉरिटी है, इसलिए उसमें जो घटित होता है वही अजघन्य में घटित होगा। पहली पृथ्वी के नारकियों का स्पर्श उनके क्षेत्र के समान ही है, यानी लोक का असंख्यात भाग है। अतः यहाँ पहली पृथ्वी के जघन्य और अजघन्य स्थिति वाले नारकियों का स्पर्श क्षेत्र के समान कहा। दूसरे से लेकर छठे नरक तक जघन्य स्थिति उन सम्यक दृष्टि नारकियों के अंतिम समय में होती है, जिन्होंने नरक में उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त के बाद सम्यक्त को प्राप्त किया और अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली है, तथा सातवें नरक में उन मिथ्या दृष्टि नारकियों के होती है जो जीवन भर सम्यक दृष्टि रहे हैं पर अंत में मिथ्या दृष्टि हो गए। हमने देखा था एक अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में गए, फिर वहां भी स्थिति से भी कम बंद किया, जहां तक पॉसिबल है वहां तक। अब यदि इन जीवों के स्पर्श का विचार किया जाता है तो वह लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण ही प्राप्त होता है, और इन द्वितीयादि नरकों के नारकियों का क्षेत्र भी इतना ही है। अतः उक्त नरकों में जघन्य स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान बतलाया है, जघन्यों का, तथा अजघन्य स्थिति वालों के स्पर्श का खुलासा जैसा ऊपर कर आए हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। यानी वो मारणांतिक की अपेक्षा जितने राजू नीचे है वहां से 14 भाग में से उतने भाग लेना। तिर्यंच गति में, मार्गणाओं में अभी तिर्यंच गति की बात चल रही है। मुनि की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये कितने हैं याद है? तिर्यंचों में जघन्य स्थिति वाले कितने हैं और अजघन्य स्थिति वाले कितने हैं? तिर्यंचों में जघन्य स्थिति विभक्ति वाले कितने हैं जीव? मैंने क्या पूछा? एकेंद्रियों में नहीं पूछा मैंने, कितने हैं पूछा? अनंत है, दोनों ही अनंत है। क्योंकि जघन्य स्थिति कौन करते हैं? एकेंद्रिय वाले हत समुत्पत्ति करते हैं ना, उसकी अपेक्षा। उत्कृष्ट में तो हमने असंख्यात्व भाग देखा था, क्यों? क्योंकि वो देवों में से आने वाले, वो तो कहीं बादर पर्याप्तों में कहीं कहीं उत्पन्न हो गए। अब यहाँ कौन से लेने हैं? जघन्य। तो ये पूरा लोक है, क्योंकि वो सब सभी लोक में पड़े हुए, पूरे लोक में। इसी प्रकार सभी एकेंद्रिय पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सॉरी पर्याप्त और सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त, जल का एक, बादर जल का एक, बादर जल का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म जल का एक पर्याप्त, सूक्ष्म जल का एक अपर्याप्त, अग्नि का एक, बादर अग्नि का एक, बादर अग्नि का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक पर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि का एक अपर्याप्त, वायु का एक, बादर वायु का एक, बादर वायु का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, फिर सभी वनस्पति का एक, पूरा लोक स्पर्श किया है ना, उस अपेक्षा से बात चल रही है, सभी निगोद अवतारिक मिश्र का योगी, अवतारिक के बाद कॉमा लगाया है, वो अवतारिक मिश्र एक शब्द है, मैंने अवतारिक और मिश्र ऐसा नहीं लिया, अवतारिक मिश्र का योगी ऊपर देखना ना, औरालिय मिस्स लिखा, मिस औरालिय मिस्स लिखा था, औदारिक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, कृष्ण आदि तीन लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। जघन्य स्थिति जहां जहां एकेंद्रिय है वहां घटित होगी, और मिथ्यात्व है ऐसा, इसलिए मिथ्या दृष्टि में भी लिया, असंयत में भी लिया, कृष्णादि तीन लेशा वाले में भी लिया, असंगी मार्गणा भी एक इंद्रियों में असंगी घटित होते हैं, तो इस अपेक्षा से वहां लिया है कि जघन्य वाले भी पूरे लोक में है और अजघन्य वाले भी पूरे लोक में है। पर यहां क्षेत्रानुगम में कही गई विधि से मूलोच्चारणा के अनुसार पाठ भेद जान लेना चाहिए। उसके अभिप्रायानुसार तिर्यंचोंग में लोक का असंख्यात्वा भाग मात्र स्पर्शन पाया जाता है। देखो निकालो, हमने मूलोच्चारणा देखी थी 67। क्योंकि वहां लिखा था कि बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में ही, और उसको कहा था स्वस्थान विशुद्ध, पेज नंबर 67 में 118 नंबर का जो पॉइंट है मूलोच्चारणा का पाठ, वहां लिखा था लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में पाए जाते हैं, और उसका कारण क्या, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में जघन्य स्वामित्व होता है और वहां उनका उक्त क्षेत्र प्राप्त होता है। अब यहां जो हम देख रहे हैं विशेषात पढ़ेंगे इतना, तिर्यंचों में मोनी की जघन्य स्थिति एकेंद्रियों के होती है तथा अजघन्य स्थिति वालों में भी एकेंद्रिय ही मुख्य है। क्यों, अन्य में नहीं होती? हाँ होती है, परंतु एकेंद्रिय अनंत है इसलिए मुख्यता उन्हीं की है और वे सब लोक में पाए जाते हैं। अतः तिर्यंचों में जघन्य और अजघन्य स्थिति वालों का स्पर्श सब लोग बतलाया है। ये वर्तमान में सब लोग है, पहले हम अतीत काल की अपेक्षा कहीं कहीं सब लोग घटित करते थे, यहाँ तो वर्तमान में ही सब लोग है। इसी प्रकार मूल में जो सब एकेंद्रिय आदि मार्गणाएं गिनाई है, अभी हमने लंबी लिस्ट पढ़ी थी, उनमें भी तिर्यंचों के समान जानना चाहिए, किंतु मूल उच्चारणा में इन सब का जघन्य स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाया है। जघन्य स्पर्श का अर्थ है जघन्य स्थिति विभक्ति वालों का स्पर्श, सो वह स्वस्थान स्वस्थान पद की अपेक्षा जानना चाहिए। यानी वो वहां कोई वो पद नहीं लगाना, मारणांतिक आदि पद लगाए बिना स्वस्थान की अपेक्षा ये बात घटित होती है। बाकी बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे।